सेहत की बातें डॉक्टर से बातें, क्या करें क्या ना करें, रोगों से कैसे बचें, जानने के लिए सुनते रहें अर्पण रेडियो से प्रसारित कार्यक्रम आरोग्य वाणी।
सभी श्रोता साथियों को संज्ञा
और अनुज का
नमस्कार। दीपावली का त्योहार है बिल्कुल नजदीक।
आप सभी के लिए बेहद शुभ हो ये त्योहार।
दिवाली होता है खुशियों भरा त्योहार,
लेकिन दिवाली एक मायने में आग से खेलने का त्योहार भी होता है।
दिए की आग, पटाखों की चिंगारी हर दिवाली में बहुत सारा नुकसान करवाती है।
इनसे बचने और सबको बचाने की जिम्मेदारी स्वयं आपकी होती है।
यानी दिवाली का त्योहार साल भर में सबसे ज्यादा सावधानी बरतने का त्योहार है।
फिर भी जब बरस रही हो हर तरफ आग, तो दुर्घटना तो कहीं भी हो सकती है।
आज के अमृतधारा कार्यक्रम में हमारा विषय है जलना,
या कहें कि जलने से बचना।
सिर्फ आग से नहीं, विद्युत से जलना, रेडिएशन से जलना,
भाप से झुलसना, तरल पदार्थों से जलना, एसिड से जलना
और पटाखों से जलना।
और जानकारी देने के लिए बर्न व प्लास्टिक सर्जरी विशेषज्ञ डॉक्टर शशिकांत साहू हैं हमारे साथ, जो सबसे पहले आपको दे रहे हैं एक मशवरा।
एक चीज मैं बताना चाहूंगा कि मरीज कितना बचता है नहीं बचता है, उसके लिए एक चीज बहुत इम्पोर्टेंट है, वो है कि मरीज हमारे पास जलने के बाद कितने समय में आया। क्योंकि ये कहा जाता है कि जो फर्स्ट 48 आवर्स है, 48 घंटे हैं पहले के जलने के, वो गोल्डन पीरियड होते हैं। उसमें अगर पेशेंट को अच्छा इलाज मिल गया, अच्छा पानी मिल गया, जैसे कि जलता है तो पानी की बेइंतहा कमी हो जाती है शरीर में, तो उसको सबसे पहले तो क्या है कि उसको पानी और दवाई चाहिए। पानी मुंह से तो नहीं ले पाता है उस समय, तो उसको बॉटल, उसका भी एक फॉर्मूला होता है जिससे हम लोग कैलकुलेट करते हैं कि इसको कितना बॉटल पहले दिन चलना है, कितना बॉटल सेकेंड डे चलना है। वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है। अगर मरीज पहले 3-4 घंटे में ही आ जाता है तो उसकी प्रोग्नोसिस बहुत अच्छी रहती है।
तो ध्यान रखिए, छोटा मोटा जलना तो होता रहता है, पर अगर कोई गंभीर रूप से सिर्फ दिवाली में ही नहीं कभी भी जले, तो शुरू के 4-5 घंटों में डॉक्टर के पास जरूर पहुंचा दीजिए रोगी को।
इसके लिए बिलासपुर में हेल्पलाइन नंबर है 0775241-2837।
जलना साइंटिफिक भाषा में या डॉक्टरी भाषा में किसको कहा जाता है?
जलना मतलब जो चमड़ी होती है हमारे शरीर में, वो एक अभिन्न भाग है शरीर का। चमड़ी से ही हम बाहर के जो कीटाणु है उससे प्रोटेक्टेड रहते हैं, मतलब उससे बचाव रहता है। एक बार अगर चमड़ी जल जाती है तो चमड़ी में जो 3 लेयर्स रहती हैं, जिसको कहते हैं हम सबसे ऊपर लेयर को एपिडर्मिस, डर्मिस एंड थर्ड लेयर इज सबक्यूटेनस फैट, तो इनमें से कोई भी भाग जल जाता है तो उसके कारण जो दिक्कतें होती हैं वो जलने वाले में आता है, जलन में आती है।
जलने का जब प्रोसेस होता है तो हमारे शरीर का जो कवरिंग आवरण है, त्वचा, त्वचा के ऊपर का भाग जो एपिडर्मिस होता है, उसके सेल्स डैमेज होते हैं।
जी, एपिडर्मिस या डर्मिस जो भी भाग डैमेज होता है तो पहले तो घाव बनेगा। घाव बनेगा तो कीटाणु उस पर अटैक करेंगे। वो घाव के थ्रू अगर 30-40% या 50% मान लो जल जाता है मरीज, तो वो घाव पूरे शरीर में, घाव के थ्रू जो कीटाणु पूरे शरीर में फैलने का डर रहता है, संक्रमण का डर रहता है और उससे जान का भी खतरा हो जाता है।
तो ये तो अगर तीनों लेयर्स जलेंगी तब ये प्रॉब्लम आएगी।
एपिडर्मिस के अलावा डर्मिस का कोई भी भाग जला, एपिडर्मस भी इवन अगर 50-60% में जलेगा तब भी प्रॉब्लम आएगा ही आएगा। तो सबसे पहले हमें ये करना चाहिए कि जैसे आग से जला है तो सबसे पहले प्रिकॉशन के रूप में यह है कि भाई आप आग को बुझाइए, कमरे का जो खिड़की वगैरह वो पूरा खोलिए, और जो मरीज है उसको स्वच्छ वातावरण मतलब कि खुले जगह पे लाना चाहिए ताकि उसको सांस लेने की दिक्कत न हो। ये सबसे प्राइमरी प्रिकॉशन है।
चलिए, ये तो बहुत गंभीर रूप से जलने की बातें हैं। अगर कोई साधारण रूप से जलता है तो उसको फौरन क्या करना चाहिए?
जैसे साधारण रूप से जैसे हम देखते हैं कि घर में जैसे भाई गैस है या गर्म पानी है उससे जल गया, हाथ जल जाता है, बच्चों का चेहरा कई बार जल जाता है, कम जला है जैसे कि हाथ जला है गर्म पानी से या आग से ही, तो सबसे पहले हम ये कर सकते हैं कि उसको नॉर्मल जो टेम्परेचर का पानी, जैसा कि नल का पानी है, इसमें ये बात ध्यान रखने वाली है कि हमें बर्फ नहीं लगानी होती है कभी भी। नॉर्मल जो नल का पानी है उस नीचे हाथ रख दीजिए और हाथ जब तक रखे रहेंगे जब तक कि जलन आपका कम ना हो। अगर आप नॉर्मल पानी से हाथ को जल्दी रखते हैं तो उसका जो बर्न की डेप्थ है मतलब कि जितनी गहराई है वो कम होती है। अगर आग लगती है तो सबसे पहले कि आग का जो सोर्स है, जैसे गैस से आग लगी गैस बुझाना चाहिए, बिजली का जो अप्लायंस है उसको बंद करना चाहिए, जो मरीज आदमी या औरत जो भी जले हैं उन्हें खुली जगह पे लाना चाहिए। आग बुझाने के लिए सबसे अच्छा चीज है कि कंबल, उसमें नायलॉन का कपड़ा बिल्कुल ना इस्तेमाल करें क्योंकि नायलॉन का कपड़ा ज्यादा आग जलाता है। तो कंबल जो है वो सबसे अच्छा चीज है, कंबल को लेके आग बुझाएं और तुरंत उस पे पानी डालें।
जलने के थोड़ी देर बाद अक्सर उस स्थान पर फफोला पड़ जाता है। इसके बारे में लोगों के मन में बहुत सी भ्रांतियां होती हैं।
जलता है तो उसके बाद हमने पानी में हाथ रखा नहीं रखा, थोड़ा सा भी ज्यादा जला है तो एक फफोला जैसा पड़ता है और फफोले के अंदर पानी भरा हुआ होता है। तो ये क्या होता है, फफोला पड़ना अच्छा होता है कि बुरा होता है?
फफोला पड़ गया है मतलब कि आपकी जो डर्मिस लेयर है, जैसे कि मैं हमने बताया था कि स्किन की तीन लेयर होती है, जो सबसे ऊपर रहती है जो डेड लेयर होती है उसको एपिडर्मिस बोलते हैं ना, वो जलता है तो उसमें क्या कि पेन ज्यादा होता है पर उसमें हीलिंग अच्छी हो जाती है। अगर फफोला पड़ गया है मतलब कि वो डीप लेयर को इन्वॉल्व कर चुका है, जो डर्मिस लेयर है उसको इन्वॉल्व कर चुका है तभी फफोला पड़ा हुआ है। मतलब उसका मतलब ये मानना चाहिए कि भाई जो घाव है गहरा है, मतलब मीडियम थिकनेस ऑफ बांस है वो समझिए, बहुत गहरा भी नहीं है और बहुत सुपरफिशियल भी नहीं है, बीच का गहराई का बांस है।
अच्छा।
ये कहा जा सकता है कि फफोले पड़े हैं।
तो फफोला पड़ना अच्छी बात है, मतलब उसको फोड़ना चाहिए या उसके ऊपर दवाई लगानी चाहिए, क्या करना चाहिए अगर फफोला पड़े?
फफोला अगर पड़ गया तो कहा जाता है कि उसे न फोड़े क्योंकि अगर आपने उसको फोड़ा तो एक घाव बन जाएगा ना। इसमें भी अलग अलग ओपिनियन है हर डॉक्टर्स का। वैसे अगर छोटा सा फफोला है तो उसको ऊपर रखें, उसका फ्लूड एक्सुडेट करके हम घाव को नहीं छेड़ते हैं, फ्लूड को हम जो उसका कलेक्शन है उसको भले निकाल देते हैं अगर पेन बहुत ज्यादा हो, नहीं तो फफोलों को सामान्यतः नहीं छेड़ा जाता है।
फफोले की ही तरह जले भाग पर पट्टी बांधने को लेकर भी लोगों की अलग अलग सोच होती है। डॉक्टर साहब इस बारे में दे रहे हैं सही जानकारी।
कभी छोटा मोटा जलता है तो उसके ऊपर पट्टी बांधनी चाहिए कि नहीं?
देखिए पट्टी बांधना ना बांधना ये डिपेंड करता है कि कौन सा भाग जला है। जैसा का चेहरे में जलता है मान लो तो यूजुअली ये होता है कि बिना पट्टी के ठीक हो जाता है। हाथ जला हुआ है या पंजा जला हुआ है तो हमें पट्टी बांधनी चाहिए। पट्टी बांधने का कारण ये है कि उसमें फिर सूजन आने का डर रहता है, तो हाथ में हमें यूजुअली पट्टी बांधते हैं, उससे हीलिंग अच्छी।
अगर फफोला पड़ गया है तो?
फफोला पड़ गया है तो हम उसमें क्या करते हैं कि एक निडिल से फफोले के पानी को निकालते हैं और स्किन को हम लोग वहीं पे रहने देते हैं, स्किन को हम डिस्टर्ब नहीं करते हैं, और एक अच्छा ऑइंटमेंट या क्रीम जो बर्न में यूज होता है उसको करके हम लोग पट्टी बांधते हैं।
लेकिन ये ड्रेसिंग भी अगर जरा सी भी बड़ी है तो डॉक्टर के पास ही आकर?
जी जी बिल्कुल, घर में ड्रेसिंग मैं सलाह नहीं दूंगा क्योंकि जैसा कि मैंने बताया कि जो घर में जो हम लोग रुई या गौज पीस यूज करते हैं वो ऑटोक्लेव नहीं होती है, अस्पताल में हम लोग उसी को बड़े स्टीम से ऑटोक्लेव करते हैं, तो उसमें जो कीटाणु होते हैं वो मर चुके होते हैं, कहीं पे रखा हुआ रुई इस्तेमाल करेंगे या करेंगे तो ऑटोक्लेव नहीं रहता है, तो उसमें संक्रमण का खतरा बढ़ सकता है। स्पेशलिस्ट डॉक्टर के पास आए तो वो सलाह देगा कि ड्रेसिंग लगेगी कि नहीं लगेगी, या ड्रेसिंग लगेगी तो कैसे ड्रेसिंग करनी।
शरीर तब जलता है जब शरीर तेज रसायन और आग के सीधे संपर्क में आता है या फिर बहुत ही नजदीक आ जाता है। अक्सर इन कुछ वजहों से लोग जल जाते हैं। रसोई के बर्तन जैसे सेंकने वाला बर्तन, ओवन शेल्फ और पैन के हैंडल, केतली, प्रेस समेत आधुनिक बिजली के उपकरण, खुले चूल्हे, गैस और बिजली की आग, कपड़ों और अन्य चीजों में दुर्घटनावश आग लगना, ब्लीच और सांद्र रसायन, सूर्य की तेज रोशनी और हवा। आग से जलने के संदर्भ में हमने कुछ जानकारी सुनी। इसे शुष्क गर्मी से जलना कहा जाता है। इसी तरह गीली गर्मी या तरल गर्मी से जलना जलने का एक प्रकार माना जाता है।
जलने की प्रक्रिया सिर्फ आग से नहीं होती है, कभी गर्म पानी या गर्म भाप से भी जलना होता है, और गर्म दूध या गर्म चाय से जलने से एक अलग तरह की जलन होती है।
नहीं, गर्म दूध चाय और पानी से तो जलन एक ही जैसा होगा, वो डिपेंड करेगा कि आपका टेम्परेचर कितना है, आपका तापमान किस हिसाब से जला। जैसे भाप में है तो भाप का जो तापमान है वो ज्यादा रहता है तो उसमें ज्यादा जलन हो सकती है।
अच्छा।
तो पर जो जलने का दूध से हो चाहे चाय हो चाहे गर्म पानी हो, इफेक्ट जो है वो सेम आएगा। उसमें भी वही हमें करना है जो प्रिकॉशन हम आग के जलने के बाद करते हैं कि भाई जैसे गर्म पानी से जला आप तुरंत हाथ या जो पैर जो भी हिस्सा जला हुआ है वो उसे हम नॉर्मल टैप वाटर के नीचे रखेंगे और जब तक रखेंगे जब तक की तो जलन कम ना हो जाए, भले 15 मिनट लगे या 20 मिनट लगे, और देन उसके बाद हम कोई स्पेशलाइज्ड जो डॉक्टर है उसको लाएंगे।
जलने पर क्या करना चाहिए ये तो हमने सुन लिया, क्या नहीं करना चाहिए ये भी जान लीजिए।
सामान्यता कई बार देखा गया है कि हम लोग अपने यहाँ जो भी चीजें रहती है जैसे टूथपेस्ट हो गया, हल्दी हो गई या घी हो गया, ये सब लगा के आ जाते, तो ये सब नहीं करना चाहिए क्योंकि स्टरलाइज नहीं रहता है।
अच्छा
है ना, इसमें भी कीटाणु रहते हैं है ना, ये स्टरलाइज नहीं रहता है, ऑटोक्लेव नहीं रहता है। तो मेरी राय तो यही है लोगों से कि भाई आप जले तो सबसे पहले नॉर्मल टैप वाटर पे आप अपना हाथ रखेंगे और फिर आपको नियरेस्ट स्पेशलाइज्ड डॉक्टर के पास जाना चाहिए।
मतलब जो आपने कहा लोग घरेलू उपचार के रूप में इन सब चीजों का उपयोग करते हैं उससे बचना चाहिए,
क्योंकि कई बार क्या है कि भाई जैसा हमने बताया कि फफोले है वो फूट गए तो घाव बन गया रगड़ से, तो अपना उपचार ना करके सिर्फ प्राइमरी जो
सिर्फ पानी डाल के डॉक्टर के पास आना चाहिए
वो बेस्ट है।
या कोई जैसे जलने वाली कुछ क्रीम आदि आती है बाजार में
जी,
तो उनको उसके ऊपर लगाया जा सकता है।
बहुत सारा क्रीम आता है वो अपन यूज कर सकते हैं, पर छोटा सा भी जला हो तो उसमें क्या है कि दाग आने का डर रहता है कभी भी। तो मेरी तो पर्सनल राय है कि आप एक बार डॉक्टर से जरूर सलाह लें, वो अच्छे से बताएगा। जैसे कई बार हाथ में जलता है तो हाथ का जलन क्या है, हम लोग सामान्यतः बहुत हल्के में ले लेते हैं हाथ पर, कई बार देखा गया कि भाई हम लोग प्रिकॉशन नहीं लेते हैं, उचित देखभाल नहीं करते तो हाथ में सूजन आ जाती है और जो फर्स्ट डिग्री या सेकेंड डिग्री बर्न है वो सूजन के कारण फुल थिकनेस बर्न पे कन्वर्ट हो जाता है।
कुछ और महत्वपूर्ण बातें जिनसे बचना चाहिए। बटर, आटा या बेकिंग सोडा आग पर कभी नहीं डालना चाहिए। क्रीम, लोशन, तेल को ट्रीटमेंट के तौर पर कभी इस्तेमाल न करें। कभी भी किसी भी घाव को खोदना या छीलना नहीं चाहिए। जब तक बहुत जरूरी ना हो तब तक किसी भी घाव को न छेड़ें या उसे हैंडल करने की कोशिश न करें। कभी भी शरीर पर जले हुए कपड़ों को निकालने की कोशिश न करें। आजकल अधिकतर कपड़े सिंथेटिक रेशे से बने होते हैं जो टॉफी की तरह पिघलते हैं और त्वचा पर चिपक जाते हैं। यदि आप उन्हें हटाने की कोशिश करेंगे तो आप त्वचा को ही अनावश्यक दर्द पहुंचाएंगे और संक्रमण को आमंत्रित करेंगे।
ये अभी आपने फर्स्ट डिग्री और सेकंड डिग्री बर्न ये शब्द लिए, ये क्या होता है?
जैसे कि मैंने बताया था कि स्किन की तीन लेयर्स होती है, एपिडर्मिस जो सबसे ऊपर लेयर होती है वो अगर जल जाता है तो उसको बोलते हैं फर्स्ट डिग्री बर्न। डर्मिस में भी दो टाइप का है, एक ऊपर की डर्मिस होती है, एक गहराई में डर्मिस होती है, दो टाइप की होती है ना, रेटिकुलर डर्मिस एंड पैपुलरी डर्मिस बोलते हैं उसको। उसमें अगर जलता है तो वो सेकेंड एंड थर्ड डिग्री बर्न कहलाता है, मतलब दैट इज पार्शियल थिकनेस बर्न, मतलब बर्न पूरा है पर डर्मिस का हाफ पार्ट इन्वॉल्व है, दैट इज पार्शियल थिकनेस बर्न। एंड फुल थिकनेस बर्न जिसमें कि पूरा डर्मिस और सबक्यूटेनस फैट या सबक्यूटेनस टिश्यू इन्वॉल्व है, दैट इज कॉल्ड फुल थिकनेस बर्न।
अधिकतर आग की घटनाएं घरों में होती हैं और घरों में भी अधिकतर रसोई घर में होती हैं। बच्चों और महिलाओं में जलने की सभी घटनाओं को बड़ी गंभीरता से लेना चाहिए।
गृहिणियां अक्सर जो है किचन में काम करते हुए जलती रहती हैं, कभी तेल छलक के आ जाता है, कभी चेहरे पे, कभी हाथ पे, तो सावधानी तो रखनी चाहिए। लेकिन अगर जल ही गई है, कपोला पड़ गया है, तो उसको वो लोग बहुत लाइटली ले लेती हैं कि घर के कामों के बीच में उस चीज को ऐसे ही अपना वही हल्दी लगा ली और घी लगा लिया। उनसे आप क्या कहना चाहेंगे?
उनसे मैं ये कहना चाहूंगा कि एक बार स्पेशलाइज्ड डॉक्टर से जरूर मिले, क्योंकि सामान्यतः यह देखा गया है कि भाई जो गृहिणी जलती है यूजुअली उनका जो छींटा आता है चेहरे पे आता है, और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि चेहरा एक महत्वपूर्ण भाग है, उसकी सुंदरता है किसी भी स्त्री या पुरुष की, तो उसके लिए आप एक बार डॉक्टर से आए, ताकि घाव तो चेहरे का बहुत जल्दी भर जाता है अगर गहरा बर्न ना हो तो, और क्या है कि एक परमानेंट निशान छोड़ जाता है। तो हम अगर पहले से ही प्रिकॉशन ले, फर्स्ट डे से ही जो प्रिकॉशन डॉक्टर बताएगा तो वो उसके हिसाब से अगर अपन चलेंगे तो हीलिंग है बहुत अच्छी होगी और जो निशान है वो बहुत कम आएगा।
लेकिन कई बार जलने वाला जो निशान है वो अपने आप ही ठीक हो जाता है, नहीं पड़ता है, और कई बार बहुत गहरा निशान पड़ता है जो लंबे समय में जाता है, तो ऐसी स्थितियां कब बनती हैं?
जैसा कि मैंने बताया कि भाई फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड डिग्री बर्न्स होती है, तीन प्रकार का गहराई के हिसाब से बर्न्स क्लासिफाइड किया गया है। तो जब फर्स्ट डिग्री बर्न होता है जिसमें सिर्फ एपिडर्मिस जो कि डेड लेयर है स्किन का, अगर सिर्फ वही जला है तब तो निशान बहुत कम आएगा, पर अगर थोड़ा सा भी स्किन ज्यादा गहरा जला या पूरा गहरा जला है तब तो निशान आना ही आना है, और कई बार उसमें संकुचन भी आ जाती है जिसे हम पोस्ट बर्न कॉन्ट्रैक्चर भी बोलते हैं।
संकुचन क्या होता है, आइए इसके बारे में भी जाने डॉक्टर शशिकांत साहू जी से।
संकुचन के बारे में जैसा कि हम जानते हैं कि भाई अगर सेकंड डिग्री एंड थर्ड डिग्री बर्न है तो वहाँ पे घाव बनता है, ठीक है, अगर हमने उस घाव का इलाज नहीं किया तो बॉडी अपने हिसाब से उसको घाव भरती है, उस भरने की प्रोसेस में जो हाथ पैर है वो मुड़ जाते हैं, तो उस चीज को बोलते हैं पोस्ट बर्न डिफॉर्मिटी या पोस्ट बर्न कॉन्ट्रैक्चर। स्किन जो है वो जो जले हुए स्किन है वापस में जुड़ जाते हैं, जैसे कोहनी के पास में या शोल्डर के पास में या ब्रेस्ट के पास में या गले में कई बार हम देखते हैं कि जुड़ा हुआ होता है। सेकेंड एंड थर्ड डिग्री बर्न होता है, उस घाव होता है तो उसमें हमें बाहर से चमड़ी लगानी पड़ती है या समुचित देखभाल से उसको घाव भरना होता है। अगर घाव 3 महीने से ज्यादा टाइम से नहीं भरा तो वो टाइम लेके भरेगा तो उसमें कॉन्ट्रेक्चर डेवलप होगा बॉडी में।
कुछ विशिष्ट प्रकार की जलन को छोड़कर अन्य सभी के लिए सामान्य इलाज है। जो व्यक्ति जलता है उसके लिए वो खतरनाक, दर्दनाक और सदमा देने वाला हो सकता है। सहायता का मुख्य नियम होता है कि आपको शांत रहकर पीड़ित व्यक्ति को जो सदमे में है और डरा हुआ है उसे प्रोत्साहित करते रहना चाहिए और उसके साथ सौहार्दपूर्ण व्यवहार करते रहें और यथाशीघ्र उसे उचित सहायता उपलब्ध कराने की कोशिश करें। चलिए अब जानते हैं कि करंट से जलना कितना खतरनाक हो सकता है।
बिजली से जैसे कि हम तरल पदार्थ या गर्म पानी हो गया आग से जलते हैं तो इसमें नॉर्मली स्किन का ही लेयर इन्वॉल्व होता है, मतलब चमड़ी जलेंगी और चमड़ी के नीचे का फैट जलेगा। परंतु यही चीज करंट से अगर अपन हम जलते हैं तो वो लागू नहीं होती है, क्योंकि करंट जो है हड्डी के ऊपर चलती है। करंट से अगर आग लग गई है तो जो ऊपर का भाग है जैसा आग से जलता है वैसा तो जलेगा ही, और करंट अगर पूरे शरीर में फैल गया है तो अंदर का जो भी मांसपेशी है उसको भी डैमेज करता है।
तो आग से जलना और करंट से जलना, इन दोनों में ज्यादा खतरनाक क्या होता है?
नॉर्मली अगर कोई जलता है तो जो उसकी प्रोग्नोसिस है कि खतरा कितना है वो 3-4 चीजों में डिपेंड करता है। जैसे कि कितना गहराई से जला है, कितना परसेंट ऑफ बॉडी जला है, मतलब कितना प्रतिशत शरीर का भाग जला है, और अगर हम सेम परसेंट ऑफ बॉडी देखें जो कि एक आग से जला है करंट से जला है तो सामान्यतः करंट से अगर जलता है तो उसमें खतरा ज्यादा होता है।
एक बार जब त्वचा की कोशिकाएं जल जाती हैं तो द्रव की गंभीर कमी हो सकती है। प्रभावित कोशिकाएं गर्मी को अपने अंदर संजो लेती हैं और बाद में ज्यादा नुकसान पहुंचाती हैं। इसलिए प्राथमिक उपचार का उद्देश्य गर्माहट से छुटकारा पाना होता है। प्राथमिक उपचार में प्रभावित कोशिकाओं के तापमान को घटाना चाहिए। हम अक्सर खबरों में सुनते हैं कि फलां व्यक्ति 30% जल गया या महिला ने खुद को आग लगाई वो 70% जल गई।
कितने परसेंट जलना जो है जीवन के लिए खतरनाक?
सामान्यता देखा गया है कि शिशुओं में जो 10 साल के नीचे जो बालक एवं बालिका है और जो 70 साल के ऊपर उनमें 10% अगर बॉडी ज्यादा जली है तो खतरा होता है। सामान्यतः अगर कोई युवा या युवती जलती है और अगर 30-40% से ज्यादा है तो खतरा जान का बहुत ज्यादा बढ़ जाता है।
लेकिन हम अक्सर सुनते हैं 70% जल गया है कोई, तो उसको भी कई बार बचा लिया जाता है, तो उसको बचाने के लिए क्या उपकरण होते हैं, क्या तरीका होता है?
70% अगर जल गया तो इसको मेजर बर्न बोलते हैं, बड़ा जलना बताया जाता है। इस कंडीशन में आपको ये है कि आप स्पेशलाइज जो बर्न सेंटर है जहाँ से बर्न के इलाज हो वहाँ पे आपको भर्ती होना चाहिए और अच्छी दवाइयाँ, अच्छा खाना और अच्छी ड्रेसिंग, अच्छा केयर से हम लोग 60-70% ऑफ बर्न्स को भी बचाया जा सकता है।
संक्रमण रोकने के लिए जले हुए ऊतकों को ढकना जरूरी है। ये पीड़ित व्यक्ति की चिंता को भी कम करता है जो जले हुए हिस्से को नहीं देख सकता। टेबल के कपड़े या चादर जो नायलॉन से न बने हों शरीर को कवर करने के लिए अच्छी होती है। शरीर को हल्के से ढकना चाहिए।
संक्रमण किस रूप में बढ़ता है और अगर कोई डॉक्टर के पास फौरन नहीं पहुंच पाया या उसका संक्रमण बढ़ गया तो उसको क्या करना चाहिए?
संक्रमण का खतरा जैसे कि मैंने बताया था कि 10-15% अगर बर्न है तो संक्रमण का खतरा काफी बढ़ जाता है। अगर कम बर्न है तो उसको खाने वाली एंटीबायोटिक्स दे के अपन ठीक कर सकते हैं, या तो ज्यादा बर्न है तो उसको एक अलग से रूम पे रख के प्रॉपर ड्रेसिंग करके प्रॉपर फ्लूड मैनेज करके प्रॉपर एंटीबायोटिक्स से ये मैनेज किया जाता है।
तो ये संक्रमण अगर किसी के बढ़ जाता है तो वो किस रूप तक पहुंचता है?
संक्रमण बढ़ता है तो वो सीधे सीधे ब्लड में चला जाता है संक्रमण। अगर ब्लड में एक बार संक्रमण बढ़ गया तो उसके लिए दवाई चालू करनी चाहिए अच्छी क्वालिटी की। अगर दवाई नहीं लें तो संक्रमण बढ़ के फेफड़ों में जा सकता है जिससे सांस उखड़ सकती है, गुर्दों में भी जा सकता है जिससे गुर्दा काम करना बंद कर सकता है, पेशाब आना बंद हो सकता है और जान का खतरा भी हो सकता है।
डॉक्टर या एम्बुलेंस का इंतजार करते हुए पीड़ित को आश्वस्त करते रहें और उसे राहत पहुंचाएं। बच्चे को पकड़कर उसे गले लगाएं, ये सबसे महत्वपूर्ण है, लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि उसे कोई नुकसान न पहुंचे।
कहा जाता है कि रेडिएशन के कारण भी जलना होता है
जी।
कहां से रेडिएशन का खतरा है, आम लोगों को और उसका जलना किस तरह से
रेडिएशन
हो सकता
का
है?
खतरा बेसिकली कम रहता है, वो वहीं पे होता है जहाँ पे आपका रेडिएशन प्लांट हो, जैसे कि भोपाल गैस फैसिलिटी अपन देख चुके हैं या रशिया में भी हुआ था जिसमें क्या है कि बहुत सारे टॉक्सिन गैसेस निकले थे या रेडिएशन प्लांट पे आग लग जाती है कई बार, तो उसमें जो जलना होता है पर वो पर्टिकुलर एक जगह पे ही होता है
लेकिन उसका असर बहुत सालों तक रहता है।
वो बर्न्स के कारण नहीं होता है, बेसिकली जो टॉक्सिक फ्यूम्स या टॉक्सिक गैस निकलते हैं वो परमानेंट जो बॉडी का हमारा डीएनए बोलते हैं जो क्रोमोसोम बोलते हैं उसमें परिवर्तन ला देते हैं, उसके कारण जो जन्मजात बीमारियां हैं वो बढ़ जाती हैं या कुछ बीमारियां हैं
मतलब उनकी अगली पीढ़ियों में भी कंटिन्यू हो
सकते हैं, आ सकते हैं जैसा कि भोपाल गैस ट्रेजेडी का है, तो वो एक अलग ही चीज है।
लेकिन उसको भी जलने में ही गिना जाएगा।
हाँ, अगर उसमें ये है कि उसमें अगर ब्लास्ट हुआ है तब उसको उसको जलने में लेंगे, नहीं तो उसको हम महामारी में ले सकते हैं।
अच्छा,
भाई एपिडेमिक है वो, एक्यूट एपिडेमिक है।
रासायनिक गैसों या पदार्थों में सबसे ज्यादा जलने के बारे में अगर सुना जाता है तो वो होता है एसिड से जलना। आसानी से उपलब्ध ये पदार्थ कभी दुर्घटनावश तो कभी जानबूझकर दुर्घटना का कारण बन जाता है।
मोस्टली अभी एसिड बर्न्स बहुत कॉमन है क्योंकि कई बार बदला लेने के हिसाब से चेहरे पे कई लोग एसिड डाल देते हैं, तो उसका भी एक बर्न बड़ा खतरनाक होता है एसिड, क्योंकि स्किन में रिएक्ट करके स्किन को जला देता है,
तो उसके तो लिए हड्डी तक दिखाई पड़ने लगती है,
हड्डी तक भी कई बार जल जाता है। वो एसिड के कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड करता है कि कितना वो कॉन्सेंट्रेटेड है। तो एसिड बर्न जैसा होता है तो उसके लिए फिर हम लोग न्यूट्रलाइज करते हैं एल्केली से, तुरंत उसको ट्रीट किया जाता है। बाकी फिर अगर घाव बन गया तो वो नॉर्मली जो घाव का ट्रीटमेंट है उसके हिसाब से होता है,
उसके लिए फिर प्लास्टिक सर्जरी वगैरह करनी पड़ती
है। उसके हिसाब से फिर प्लास्टिक सर्जरी होती है,
उसी इंसान की स्किन कहीं और से लेकर ड्राफ्टिंग की जाती है।
पेशेंट कई बार हमारे पास 60-70% बच जाते हैं, पर कई बार होता है कि भाई घाव नहीं भर रहा है। अगर घाव नहीं भरा तो जैसा मैंने आपको पहले बताया दिया कि उसमें संकुचन और डिफॉर्मिटी हो जाएगी, कि उसमें फिर हम लोग दूसरी जगह की चमड़ी लेके या कई बार दूसरे आदमी का भी चमड़ी लेके हम लोग घाव भरने की कोशिश करते हैं।
अगर आपके पास कोई जलने के फौरन बाद आया और आपको शक हुआ कि इसको संकुचन हो जाएगा या डिफॉर्मिटी हो जाएगी, तब आप लोग उसका फौरन ऑपरेशन करके उसका ठीक करते हैं।
एक ऑप्शन ये भी रहता है कि अगर लगता है कि भाई ये तो गहरा ही है अपने से नहीं भरेगा, तो अगर हमारे पास बहुत जल्दी आ जाता है तो उस समय इन्फेक्शन जीरो रहता है, तो हम लोग क्या करते हैं कि जो गहराई से जला रहता है वो चमड़ी निकाल के फिर हम फ्रेश चमड़ी दूसरी जगह से लेके लगा सकते हैं। इसमें रिजल्ट बहुत अच्छा आता है अगर हम अर्ली करते हैं।
लेकिन कई बार बहुत सारे लोग दिखाई पड़ते हैं जो जले हुए हैं, गले के पास हाथ वात उनका जला है, डिफॉर्मिटी भी दिखाई पड़ती है, वैसे लोग अगर अपना इलाज करवाना चाहें तो उसके लिए क्या प्रोसेस है?
उसके लिए फिर हम प्लास्टिक सर्जरी करके उनका जो गला में संकुचन है या हाथ में जो डिफॉर्मिटी है उसको हम पूरी तरीके से ठीक कर सकते हैं,
तो वो पहले की तरह पूरा सही हो जाता है।
भगवान ने जो बना दिया है वैसा तो 100% आना मुश्किल रहता है, पर मान के चलिए कि अगर अच्छे से ऑपरेशन हो तो 80-95% तक मैच कर सकता है और आदमी अपना काम कर सकता है।
सूरज की किरणें बहुत सी सेंसिटिव त्वचा वालों के लिए सन बर्न का कारण बन जाती है। इसी तरह ठंडे स्थानों पर जाने से बहुतों को स्नो बर्न हो जाता है। डॉक्टर साहब से हमने इस संदर्भ में भी चर्चा की।
सन बर्न आजकल बहुत कॉमन है, इसका 3-4 कारण। एक तो ग्रीन हाउस इफेक्ट के कारण टेम्परेचर काफी बढ़ गया है, सन का जो रेज है वो काफी बढ़ गया है, सन में एक्चुअली अल्ट्रावायलेट रेज रहती है जो कई बार कैंसर भी कराती है, तो हमें सन से बहुत प्रोटेक्शन करना चाहिए। कुछ हद तक तो सूर्य की किरणें हैं वो हमारे बॉडी को चाहिए विटामिन डी सिंथेसिस के लिए, पर अगर इसका प्रभाव ज्यादा हो गया, जैसे कि हम लोग काम करते हैं बाहर या कोई खिलाड़ी है, उन लोगों को सन बर्न के प्रभाव से बचना अति आवश्यक है। सन बर्न में क्या होता है कि जो एपिडर्मिस है वो जल जाती है कई बारी, तो आदमी का रंग काला हो जाता है, झुर्रियां आने लगती है, तो ये सब चीजों से बचाव बहुत जरूरी है।
तो इसके लिए बर्न होने के बाद आपके पास आते हैं कि उसके पहले ही कुछ सावधानियां रखनी चाहिए?
उसके पहले ही सावधानी रखनी चाहिए क्योंकि बचाव ही सबसे अच्छा इलाज है ये बोला जाता है। तो उसके लिए हम जैसे कि डिपेंड करता है कि हम काम क्या करते हैं, जिन लोगों का जॉब है बाहर घूमना उन्हें स्पेशल एहतियात बरतनी पड़ती है, जैसे कि हम जा रहे हैं तो हम पूरा बॉडी अपना कवर करके जाएं, गॉगल्स पहने अगर गर्मी का मौसम है, कैप पहने, स्कार्फ लगाए, और एक सनस्क्रीन क्रीम आती है बहुत सारी मार्केट्स में अवेलेबल है कमर्शियल नेम से, तो सनस्क्रीन क्रीम खासकर फेस में लगाना बहुत जरूरी है अगर आप अपने त्वचा को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं।
सनस्क्रीन क्रीम्स में भी जो आपने कहा मार्केट में आती है उसमें लिखा होता है कि 40% SPF है या 60% SPF है, तो कैसी क्रीम यूज करनी चाहिए?
सामान्यतः सूर्य की किरणें के दुष्प्रभाव से बचना है तो हमें SPF 25 के ऊपर का क्रीम लेना चाहिए, तो उससे ये होता है कि काफी सारे अच्छे ब्रांडेड कंपनी के हैं जिनमें एसपीएफ 40-50 और अल्ट्रा वायलेट ए बी दोनों रेस से है, तो आजकल तो इतना अच्छा सनस्क्रीन आ गया है वो भी अफोर्डेबल कॉस्ट में कि आप यूज कर सकते हैं।
इसी का ठीक उल्टा, जो लोग गर्म क्षेत्रों में रहते हैं कई बार घूमने के लिए ठंडे प्रदेशों में जाते हैं और वहाँ पे बर्फ के कारण या बहुत ज्यादा ठंडक के कारण उन लोगों के चेहरे या हाथ पैर झुलस से जाते हैं, जिसको हम स्नो बर्न कहते हैं। तो ये क्या है, स्किन का सेंसिटिव होने का कारण है कि किसी कुछ खास लोगों को होता है या किसी को भी हो सकता है?
ये किसी को भी हो सकता है। बेसिकली जैसे पहाड़ी क्षेत्र में जाते हैं घूमने के लिए तो वहाँ पे 0 या -5-10 डिग्री होता है, तो उस समय हमें प्रिकॉशन लेना। बेसिकली जो स्नो बर्न्स होता है उंगलियों में या पैरों की उंगलियों में होता है, जो भाग खुला है, तो उसमें क्या होता है कि वो स्पाज्म होके उनमें नेक्रोसिस होने का या काला पड़ने का डर रहता है। तो उसके लिए प्रोटेक्शन ये है कि भाई हम बाकायदा ग्लव्स और अच्छे जूते पहन के वहाँ पे जाएं और पहाड़ी क्षेत्र का मजा लें।
अब डॉक्टर साहब, दिवाली बिल्कुल नजदीक है और इस समय में शायद जलने के केसेस सबसे ज्यादा होते हैं, तो सावधानियां हमारे श्रोताओं को आप बताएंगे, और अगर किसी के सामने कोई जलने की घटना होती है तो फौरन क्या उपचार किया जा सकता है ये बताएं।
दिवाली में बेसिकली एक तो फटाके से जल सकता है और दूसरा जो है भाई आग से जल सकता है, क्योंकि दिए वगैरह जलाते हैं। तो सबसे पहले तो मैं श्रोताओं से कहना चाहूंगा कि सावधानी ही बचाव है। हम सावधान रहें, बच्चे जैसे फटाके जलाते हैं तो उनको बड़ा फटाका ना दे, एटम बम वगैरह ना फोड़ने के लिए दे, छोटे फटाके से उनको करें। और देखा गया है कि बच्चे और टीनेजर्स है वो ज्यादा उत्सुक रहते हैं फटाका फोड़ने के, और सबसे ज्यादा घटनाएं इसी एज ग्रुप में होती है। तो जब भी ये लोग फटाका चले, एक बड़ा जो मैच्योर आदमी है वो उनके साथ रहे।
पटाखों से कई और हानियां भी होती हैं, जैसे आर्थिक अपव्यय, पर्यावरण को नुकसान, अधिक आवाज से पशु पक्षी और बच्चे घबरा जाते हैं, बीमारियां, आगजनी, अंधा हो जाना, कई अशुभ दुर्घटनाएं, बाल मजदूरों को बढ़ावा, कई छोटे बड़े जीवों की हिंसा और भी कई अनेक।
कोई बड़ा बम अगर किसी के हाथ में बारूद फट गया या अनार अक्सर ऐसा होता है कि वो लोगों के हाथों में फट जाते हैं, तो उसके लिए क्या करना चाहिए?
अगर बारूद हाथ में फट गया है तो संभवतः अंदर की मांसपेशी भी फट सकती है, हड्डी भी फ्रैक्चर हो सकता है, तो इसके लिए तो आप घर में इलाज ना करें वही अच्छा है। आप तुरंत अपने नजदीकी डॉक्टर के पास जाएं, वो देखेगा, एक बार समझेगा, उसके बाद फिर अगर जैसा है वो आपको सलाह देगा।
बिलासपुर के लिए आपका सेंटर दिवाली के दिन भी 24 घंटे खुला हुआ रहता है?
जी, हमारा सेंटर 24 घंटे खुला रहता है। हमारा हेल्पलाइन नंबर है 0775241-2837। लेकिन हम चाहेंगे कि कोई भी मरीज हमारे पास ऐसा एक्सीडेंटल जल के ना आए, सबका दिवाली सुखमय हो, यही हमारी कामना है।
तो श्रोताओं, जलने की बातों से जुड़े अमृत धारा कार्यक्रम के इस अंक को साल भर ध्यान में रखिएगा, क्योंकि ऐसी दुर्घटनाएं कभी भी और कहीं भी हो सकती हैं।
दिवाली के लिए हम कहेंगे सेफ दिवाली, केयरफुल दिवाली, प्रदूषण मुक्त दिवाली और हैप्पी दिवाली। संज्ञा और
अनुज को
इजाजत दीजिए, नमस्कार।
सुनते रहे अर्पण रेडियो से प्रसारित कार्यक्रम आरोग्य वाणी।
आप सुन रहे हैं रेडियो अर्पण।